ज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण। कल ये चर्चा चल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने किस तरह गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया और तत्पश्चात नरसिंह मंदिर का भी मार्जन किया, स्नान वहां कुंड में किया और फिर सब जगन्नाथ का महाप्रसाद का सेवन करने एक स्थान पर बैठ गए। जगन्नाथ का महाप्रसाद बड़ी मात्रा में मंदिर के सुपरिंटेंडेंट अध्यक्ष ने भक्तों के लिए लाया था। उसके अलावा अन्य कई भक्तों ने भी महाप्रसाद लाया था। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बिठाया और सबको अपने अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद दिया गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, जो कि प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी ले रहे थे, कि मुझे केवल लफड़ा व्यंजन दे दो। लफड़ा व्यंजन मतलब साधारण जो सब्जियां और कभी कभी चावल को मिलाकर एक तरह का पदार्थ होता है जो साधारण गरीब आदमी खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनसे कि ये लफड़ा व्यंजन जो साधारण अन्न है वो मुझे दे दो और जो अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट व्यंजन है, जैसे मिठाइयां हैं, खीर है, नाना प्रकार के और स्वादिष्ट पदार्थ हैं, वो सब भक्तों को दे दो। हाँ, वैसे देखा जाए तो महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं होता, चाहे कोई मीठा हो या कोई नमकीन हो, साधारण हो या असाधारण हो, जगन्नाथ का महाप्रसाद तो महाप्रसाद ही रहता है। परंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु केवल सरल महाप्रसाद लेना चाहते थे और जो अलग अलग खीर और मीठे पदार्थ थे उन्होंने भक्तों के बीच में बंटवाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं तो वो अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो सबके हृदय में स्थित हैं, कि किस भक्त को कौन से पदार्थ ज्यादा पसंद थे। और इस प्रकार उन्होंने स्वरूप दामोदर को आदेश दिया कि आप इस भक्त को ये पदार्थ ज्यादा दे दो, उसको ज्यादा खीर पसंद है उसको वहां वो दे दो, उसको ये प्रकार के लड्डू ज्यादा पसंद है उसको ये दे दो। तो ऐसे जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में जो भक्त थे प्रसाद वितरण के लिए, उन्होंने बड़े हृदय से सारे भक्तों को पेट भर के खिलाया। प्रसाद वितरण करने वालों में से जगद आनंद भी थे। जगदानंद पंडित, इनका और चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध था वो बड़ा अद्भुत था। अगर जगदानंद पंडित कुछ चैतन्य महाप्रभु को भेंट देते या कुछ प्रसाद देते और अगर चैतन्य महाप्रभु उसको नहीं स्वीकार करते तो जगदानंद पंडित इतने दुखी हो जाते कि वो उपवास करते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगदानंद प्रभु से घबराते थे। जो भी जगदानंद प्रभु देते थे पंडित उसको वो स्वीकार कर लेते थे। तो जगदानंद पंडित आए, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वो केवल साधारण महाप्रसाद लेना चाहते हैं, लफड़ा व्यंजन। आनंद पंडित वहां पर पास में आए, अचानक उन्होंने सारे मीठे पदार्थ बहुत बड़ी संख्या में उनके थाली में डाल दिया। चैतन्य महाप्रभु भारी रूप से नाराज हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर से वो जानते थे कि ये जगदानंद के प्रेम की लीला है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे से एक एक को खाना आरंभ किया, सेवन करना शुरू किया, क्योंकि वो सोच रहे थे अगर मैं नहीं लूंगा तो जगदानंद अभी उपवास करेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके खाना शुरू किया। उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी आए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बड़े मीठे स्वरों में कहा चैतन्य महाप्रभु से कि ये तो देखो कितने अच्छे पदार्थ हैं, जगन्नाथ ने स्वयं इसको चखा है, थोड़ा सा खाकर देख लो। कभी कभी थोड़े प्रेम से, कभी थोड़े धमकी से, ऐसे जगदानंद पंडित और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पेट भर के खिलाया, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे प्रसाद का सेवन किया और इसको देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य भक्त आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद पंडित ने ऐसे सारे चीजें महाप्रभु को खिलाए थे जो कि वो खाने के लिए वैसे तैयार नहीं थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को भी साथ में बिठाया, उनको भी खिलाया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य को खिलाने के लिए आदेश दिया महाप्रभु ने, और उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि इनको भी जरा खिलाइए। तो नाना प्रकार के खीर और स्वादिष्ट मिठाइयां जो हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य को देते गए एक के बाद एक, और भट्टाचार्य बड़े आनंद में इस महाप्रसाद का सेवन करते रहे। और जैसे वो सेवन कर रहे थे तो उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहां पर आए और वो कहने लगे कि देखिए ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं पहले किस तरह के भौतिक चीज में रस लेते थे और अभी कितना प्रसाद का दिव्य आनंद ले रहे हैं भक्तों के संग में, कितना परिवर्तन हुआ। तो उस समय ये वाक्य वास्तव में गोपीनाथ आचार्य ने कहा था जो कि प्रसाद भी बांट रहे थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे ये तो सब आपकी कृपा है। फिर चैतन्य महाप्रभु की ओर देखकर वो कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो बड़ी अपार है, उनकी कृपा की वजह से ही मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कौवे के समान था अब गरुड़ के समान हो गया है। मैं तो पहले केवल एक शुष्क तार्किक था, तार्किक मतलब जो केवल तर्क वितर्क में वाद में रुचि लेता है, क्योंकि पहले सार्वभौम भट्टाचार्य वो स्मार्त ब्राह्मण थे, केवल विधि विधानों में ज्यादा रुचि लगते थे, भक्ति में कोई रुचि नहीं थी उनको। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि अब मैं तो ये अमृत के सागर के लहरों में मैं डूब रहा हूं, और इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं भक्ति का आनंद ले रहा हूं। और इस तरह से सभी लोगों ने बड़े आनंद से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद फिर से दोबारा कीर्तन चालू हो गया, बहुत कीर्तन किया भक्तों ने, फिर कीर्तन को विश्राम किया और फिर सब लोग जगन्नाथ का दर्शन के लिए आगे चले गए। इसके पहले जब प्रसाद के पहले कीर्तन हुआ था तो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था श्री गोपाल, चैतन्य महाप्रभु ने जो बहुत नृत्य किया था उसके बाद में उन्होंने श्री गोपाल को आदेश दिया था कि तुम भी नृत्य करो। तो श्री गोपाल ने बहुत उत्साह से नृत्य किया और अचानक वो बेहोश होके नीचे गिर पड़ा। जैसे वो गिर पड़ा तो अद्वैत आचार्य ने उसे गोदी में ले लिया और ये देखा कि इसकी सांस धीरे धीरे बंद होती जा रही है, तो सारे भक्तों ने जोर से नरसिंह भगवान की प्रार्थना शुरू की और कीर्तन शुरू किया जोर से, और लेकिन फिर भी सांस बंद ही हो गया, वापस सांस आया नहीं उस बालक का। तो अद्वैत आचार्य सारे भक्त वहां पर रोने लग गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और उन्होंने जोर से उस बालक के पास में आकर कहा, श्री गोपाल उठो। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की आवाज उस बालक ने सुनी वो उठ गया और उठ के कीर्तन करने लगा। तो ऐसे सारे चमत्कार हैं चैतन्य महाप्रभु के। फिर सारे भक्त बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु और उन भक्तों ने गुंडीचा मंदिर के मार्जन की लीला समाप्त की, प्रसाद की लीला समाप्त की और फिर जगन्नाथ मंदिर की ओर आगे बढ़े। नेत्रोत्सव का समय था, जैसे कि कल चर्चा कर रहे थे, नेत्रोत्सव का उत्सव जो होता है वो स्नान यात्रा या स्नान यात्रा के बाद जो 14 दिन होते हैं अनवसर, उसके बाद ये पहला दर्शन होता है। और वैसे भी सारे भक्त 15 दिन भगवान के विरह में तड़प रहे थे, 15 दिन वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए बड़े आतुरता से सभी लोग जगन्नाथ के मंदिर की ओर तेजी से चल पड़े। और वहां पर इतनी तीव्र इच्छा उनकी थी भगवान का दर्शन करने के लिए कि उन्होंने मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। और वो क्या था मर्यादा, कि वैसे जहां भगवान को भोग चढ़ाया जाता है वहां पर वास्तव में किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए। हां, नेत्रोत्सव के समय वैसे सबको ये अवसर दिया जाता है कि वो भगवान का दर्शन करें और भगवान को जैसे भोग चढ़ाया जाता है उस चीज का भी दर्शन करें। तो सारे भक्त वहां पर आए और भगवान जगन्नाथ जी जिनको नया रंग लगाया गया था अब और भी सुंदर दिख रहे थे। जैसे कल चर्चा कर रहे थे, जब 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं तो उस अनवसर जो समय है उसको अंगराग भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को नया रंग लगता है, और उसको नव यौवन भी कहते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ इसके समय बड़े नवयुवक जैसे रखते हैं, बड़े फ्रेश नए लगते हैं। और इस सुंदर भगवान का दर्शन लेकर सारे भक्त बहुत प्रभावित हुए, वो अपनी आंख भगवान के सुंदर रूप से हटा नहीं पाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि जब सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग जगन्नाथ जी के सामने नेत्रोत्सव के समय आए तो वहां पर उनकी आतुरता कितनी थी और उन्होंने भगवान का दर्शन किस प्रकार से किया। त्रिशार्त प्रभु नेत्र भ्रमय युगल गाढ़ तृष्ण पिए कृष्णेर वदन कमल। त्रिशार्त प्रभुर, त्रिशार्त मतलब वो भगवान का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत आतुर थे। भ्रमर युगल, जगन्नाथ जी के जो नेत्र हैं वो दो भौरे के समान थे। गाढ़ तृष्णाएं पिए कृष्णर वदन कमल, और जिस प्रकार से भ्रमर जो होते हैं वो फूलों के पास जाकर, कमलों के पास जाकर अमृत का पान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के दो आंखें जो कि भ्रमर के समान थे, भौरे के समान थे, और जगन्नाथ जी का जो मुख कमल है वो सुंदर कमलों के बराबर थे, तो ये भंवरे जगन्नाथ जी के वदन कमल से वो मधु का पान कर रहे थे। दूसरे शब्दों में जगन्नाथ जी का सुंदर मुख कमल इतना आकर्षक था कि चैतन्य महाप्रभु अपने आंखों को उस सुंदर मुखारविंद से हटा नहीं पाए। तो भगवान का सुंदर स्वरूप सबको आकर्षित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि जगन्नाथ जी तो स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक। जगन्नाथ जी का ये जो अद्भुत रूप है ये कहीं और नहीं पाया जाता है, केवल जगन्नाथपुरी में पाया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप एक विरह का रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उनको विरह की भावना कभी कभी हुआ करती थी। अब हुआ ये कि जब सूर्य ग्रहण के समय सारे द्वारका के निवासी कुरुक्षेत्र गए थे तो उस समय वृंदावन से भी सारे ब्रजवासी आए थे और उनका मिलन वहां पर हुआ था। तो ऐसे हुआ कि जब वहां पर सारे ब्रजवासियों ने देखा कि कृष्ण आए हैं तो वो द्रौपदी और रोहिणी देवी सब वहां पर एकत्र हो गए थे और ब्रजवासी भी वहां पर आए थे। तो उस समय वो सुनना चाहते थे कि वहां पर द्वारका में भगवान क्या करते हैं, वृंदावन में क्या लीला करते थे। उस समय ये लीला सुनते सुनते जब कृष्ण भगवान, बलराम और सुभद्रा भी बाहर आए थे, लेकिन आदेश था कि उनको अंदर नहीं ले जाना चाहिए, किसी को अनुमति नहीं है। तो बाहर ही से जब भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में होकर उनके हाथ जो हैं वो उनके शरीर के अंदर चले गए, आंख बड़े बड़े होने लगे और बिल्कुल स्तब्ध वहां पर हो गए, वो स्थिर हो गए, हिल नहीं पाए। और इस प्रकार से ऐसा एक रूप आ गया जैसे कि जगन्नाथ जी का अब है। तो ये रहस्य है जगन्नाथ जी के इस अद्भुत रूप के पीछे। तो ये एक विरह का रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की लीलाएं सुनी तो इतने विरह की भावना उनके हृदय में हो गई कि ये सारे जो लक्षण हैं उनके शरीर में प्रकट हो गए। तो ये तो श्री कृष्ण है, इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु वो भी कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में है। तो देखिए ये अद्भुत लीला कि कृष्ण कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं लेकिन दोनों कृष्ण बड़े अलग रूप में हैं। चैतन्य महाप्रभु वो भी कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में, जगन्नाथ वो भी कृष्ण है लेकिन एक अलग रूप में, वो कृष्ण जो कि अलग वृंदावन के विरह में है, और चैतन्य महाप्रभु वो भी राधा रानी है, वो भी विरह की भावना की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप धारण कर रहे थे इसलिए उन्होंने ये हमें सिखलाया कि कैसे भगवान का दर्शन किया जाता है। जब भगवान का दर्शन करने आते हैं तो हमें पूरे ध्यान लगाकर भगवान के सुंदर रूप को देखना चाहिए। कई बार ये होता है कि जब लोग मंदिर में आते हैं तो बाकी सब कुछ देखते हैं, भगवान को आखिर में आके देखते हैं, और देखते हैं तो थोड़ा समय फिर बाकी सब इधर उधर देखते हैं। हाँ, सुंदर मंदिर को भी देखना चाहिए लेकिन जब भगवान के सामने आते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति भावना से उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। चरण कमलों से शुरू करना चाहिए और धीरे 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 से आंखों को हमें ऊपर उठाकर उनके मुखारविंद तक आना चाहिए। और इस तरह से जब हम दर्शन करते हैं तो मन ही मन में या तो फिर बोल के हमें थोड़ी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, भगवान की कृपा याचना करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से दर्शन लिया, यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं,
प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल।
प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, जगन्नाथ जी के नयन युगल दो नेत्रों का वर्णन है। उनका सौंदर्य कैसा था? प्रफुल्ल कमल जिनी, प्रफुल्ल प्रफुल्लित जो कमल पुष्प हैं, उनसे भी ज्यादा उनको जीत लेने वाला, जिनी उनको जीत लेने वाला ऐसा सौंदर्य था। नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल, उनके जो उनका गला जो था जगन्नाथ जी का, नीलमणियों से बना हुआ दर्पण जैसे था, मतलब उस तरह की कांति थी और झलमल झगमग कर रहा था। इस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के बहुत पास में आके दर्शन कर रहे थे। वैसे आमतौर से जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर वो काफी दूर से भगवान का दर्शन किया करते थे, लेकिन इस समय उनकी उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि गरुड़ स्तंभ के आगे आकर, बिल्कुल सामने पास में से आकर वो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं,
बांधुली रफुल जिनी अधर सुरंग, ईशत हसित कांति अमृत तरंग।
बांधुली रफुल जिनी अधर सुरंग, अधर उनका जो अधर है चिन्ह वो कैसा था?
बांधुली रफुल जिनी,
एक बहुत सुंदर फूल होता है जिसको बांधुली कहते हैं, और उनका जो अधर है वो बांधुली के फूल के सौंदर्य को भी हरा देता था, इतना सौंदर्य था। सुरंग बहुत ही सुंदर रंग का भी था। ईशत हसित कांति अमृत तरंग, और उनकी हल्की मुस्कान थी चेहरे पर, और ये हल्की मुस्कान का सौंदर्य इतना था कि मानो वो अमृत के तरंग थे।
कितने काव्यात्मक ढंग से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जगन्नाथ के सौंदर्य का वर्णन किया है। वास्तव में अगर कोई साधारण व्यक्ति आके जगन्नाथ का दर्शन करे तो उसे लगता है, अरे ये कैसा रूप है, ये कुछ शरीर के अंग भी बराबर नहीं है। तो शायद कोई अभक्त सोच सकता है कि ये अद्भुत जो रूप है इसमें इतना सौंदर्य कैसे लग रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ रहे थे कि ये स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए ये रूप होते हुए भी उनको इतना सुंदर लगा कि यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरह से यहां वर्णन कर रहे हैं।
श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षण क्षण, कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने।
श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षण क्षण, हर क्षण उनके श्री मुख का सौंदर्य और उसकी कांति बढ़ते रहे। जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु और अन्य भक्त दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते करते भी हर एक क्षण में उनके सुंदर मुखारविंद का तेज, उनकी कांति सौंदर्य बढ़ते जा रहा था।
कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने, और जो कोटि जो भक्त थे, हजारों की संख्या में जो भक्त वहां एकत्र हुए थे, और उनके आंखें जो भंवरे के समान थी वो मधुपान कर रहे थे। जगन्नाथ भगवान के सुंदर मुखारविंद से जो मधु की तरह जो कांति आ रही थी उसका पान सारे भक्त कर रहे थे।
यत पिए तत तृष्ण बाढ़े निरंतर, मुखम भुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर।
और जैसे जैसे जतो पिए तत तृष्ण बाढ़े निरंतर, जितना वो पी रहे थे इस मधु को उतना उनकी तृष्णा प्यास बढ़ रही थी, अर्थात
जितना वो जगन्नाथ जी के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते जा रहे थे, उनकी इच्छा और तीव्र होती जा रही थी कि और वो भगवान का दर्शन करते जाएं, करते जाएं। ये बहुत एक खूबी है भक्ति में कि भगवान के भक्त जो होते हैं, जितना भगवान का दर्शन करते हैं, जितना भगवान की सेवा करते हैं, नामोच्चारण करते हैं, वो और ज्यादा करना चाहते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब किसी ने पूछा कि आप कीर्तन क्यों करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप क्यों करते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसलिए करते हैं कि हमें और हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का मौका मिले। मतलब हरे कृष्ण मंत्र बोलने की जो संधि है वही इतनी मूल्यवान है, वही इतना बड़ा सौभाग्य है। यही अपने आप में एक उद्देश्य है कि भगवान के भक्त भगवान के नाम उच्चारण से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन भक्ति मार्ग में ये साधन भी है और साध्य भी है। ये दो बड़े बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, साधन और साध्य। साधन मतलब जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं किसी चीज की प्राप्ति के लिए। जैसे एक व्यवसाय है, वो हमारे भरण पोषण का एक साधन है। लेकिन हम व्यवसाय नौकरी क्यों करते हैं, हम ये साधन को स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि कोई अंतिम उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि हमें कुछ धन मिले जिससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। तो साधन और साध्य, तो पैसा ये साध्य है और व्यवसाय ये साधन है। तो साधन और साध्य भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन भक्ति पथ में भगवान की सेवा करना, उनके नाम उच्चारण करना, उनका दर्शन करना, ये साधन है। लेकिन साध्य अलग नहीं है, साधन और साध्य एक ही है। हम भगवान की सेवा क्यों करते हैं, और सेवा करने के लिए। भगवान का दर्शन क्यों करते हैं, और दर्शन के लिए आकर्षित होने के लिए। तो इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि जितना ज्यादा जगन्नाथ जी के भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग आए थे, जो वो जितना ज्यादा भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, उतनी ज्यादा उनकी उत्कंठा हो रही थी, इच्छा हो रही थी जगन्नाथ जी का दर्शन और करने के लिए। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि यहां बताया जाता है कि ज्योतो पिए तो तृष्णा बाढ़े निरंतर, कि उनकी तृष्णा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और बढ़ते जा रहा था, तो इसमें और संसारी तृष्णा में अंतर क्या है? भगवद गीता में भी और अन्य सारे शास्त्रों में संसार के भोग वृत्ति की कड़क निंदा की गई है और यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति संसार का भोग करना चाहता है वो कभी भी तृप्त नहीं होता। जितना ज्यादा भोग करता है उतना वो असंतुष्ट रह जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। वो कहते हैं कि जो लोग संसार का भोग करना चाहते हैं, तृप्यंति न इह, कभी तृप्त नहीं होते हैं ऐसे भोग से, और ऐसे लोग कृपण हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। बहु दुख भाजा, और ऐसे इंद्रिय तृप्ति के कार्य से, ऐसे विषय भोग से केवल उनको दुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। यन्मैथुनादिग्रह मेरि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोर इव दुख दुखम। ये भौतिक भोग के कार्य जो हैं, ये सुख जो मिलता है इससे तुच्छ श्रेणी का सुख है। जो भक्त होते हैं ऐसे सुख को बड़ा तुच्छ मानते हैं, निंदनीय मानते हैं। और जो लोग ऐसे सुख का भोग करने का प्रयास करते हैं वो भी बड़े कृपण हैं, बड़े अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि ऐसा सुख का अनुभव करने से वो कभी तृप्त नहीं होंगे। तो यहां पर प्रश्न ये हो सकता है कि भौतिक भोग में भी कोई तृप्त नहीं होता, और यहां से भी भगवान के भक्त जो है भक्ति मार्ग में भी भगवान का दर्शन करके भी तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो फिर भक्ति में और भौतिक भोग में अंतर क्या है? अंतर ये है कि हालांकि एक दृष्टि से दोनों पथ में कोई तृप्त नहीं होता, लेकिन पहले पथ में केवल दुख मिलता है, केवल कष्ट मिलता है, और दूसरे पथ में भक्ति में हालांकि वो अतृप्ति है, लेकिन वो आनंद की अतृप्ति है, वो आनंद का सागर बढ़ते रहता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में वर्णन करते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लेते लेते हम आनंद के सागर में डूब जाते हैं, और इस आनंद के सागर में डूबकर हर एक क्षण हमें अमृत का पान करने को मिलता है, और यह स्वाद पाकर हम कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो हालांकि यहां पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जगन्नाथ जी के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके तृप्त नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसे अतृप्त अवस्था में भी उनको ऐसे एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी जो संसार में किसी भी चीज से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति संसार के सौंदर्य से आकर्षित होता है बड़ा पीड़ित हो जाता है, और अगर हमें संसार के सौंदर्य से के आकर्षण से मुक्त होना है तो हमें भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करते रहना चाहिए। ये कथा हमने पहले भी कई बार सुनी है कि जो रामानुजाचार्य के भक्त थे वो गृहस्थ थे, और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और वो अपने पत्नी के सौंदर्य से इतने आकर्षित हो गए थे कि उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और जहां भी वो पत्नी बाहर जाती चलते तो ये एक छाता लेकर उनके पीछे पीछे जाते ताकि उनको धूप न लगे, बारिश न लगे। अब हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो लोग उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे कि अपने पत्नी के पीछे पीछे छतरी लेकर घूम रहा है, तो ये व्यक्ति ऐसे कर रहा था और खबर मध्वाचार्य तक पहुंच गई। मध्वाचार्य को बड़ा दुख हुआ कि व्यक्ति ने दीक्षा ली है और भगवान के प्रति आकर्षित होने के प्रति बजाय वो केवल अपने पत्नी के सौंदर्य में इतना आकृष्ट हो गया है कि भगवान को भूल गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर मध्वाचार्य ने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी सुंदर वस्तु दिखाता हूं जिससे कि तुम और संसार की सारी सुंदर चीजों को भूल जाओगे। तो उन्होंने ले जाकर उनको भगवान रंगनाथ जी, जो कि विष्णु भगवान के सुंदर रूप हैं, जो कि योग निद्रा में अनंत शेष पे शयन कर रहे हैं, उनका दर्शन कराया और कहा कि देखो इनकी सुंदर आंखें, ये नेत्र देखो कितने सुंदर हैं। और रामानुजाचार्य की कृपा से फिर उस भक्त ने दर्शन किया। वैसे पहले भी शायद कई बार उन्होंने किया होगा दर्शन, लेकिन इस बार एक शुद्ध भक्त की कृपा हुई उनके ऊपर, इसलिए वास्तव में दर्शन कर पाए। नहीं तो इन आंखों से देखते थे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रामानुजाचार्य जैसे महाभागवत की कृपा प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने दर्शन किया वो कुछ अलग ही था। वो इतने आकर्षित हो गए भगवान के सुंदर नेत्र कमलों से कि वो सब कुछ भूल गए और फिर भगवान की भक्ति में लग गए। तो ठीक उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे हम आते हैं मंदिर में और भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे से हमारे हृदय में जो भी भौतिक आसक्तियां हैं वो कम हो सकती हैं, और धीरे से हमारे हृदय में एक प्रकार की आसक्ति हो जाएगी भगवान का दर्शन करने के लिए। जो व्यक्ति रोज मंदिर में आके भगवान का दर्शन करने का एक अभ्यास करते हैं, उनको एक आदत पड़ जाती है, धीरे 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 से वो आसक्ति जो बढ़ती है भगवान के सुंदर रूप से, फिर जब वो दर्शन के लिए नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि कुछ कमी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग आते हैं भय से कि दर्शन नहीं करेंगे तो हमें कुछ ये गड़बड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, कम से कम उस विचार से तो आ रहे हैं, लेकिन जब आते हैं और भक्ति भावना से भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको आकर्षण हो जाता है भगवान के सुंदर रूप से। और फिर जब आकर्षण हो जाता है तो फिर वो खुद ब खुद आना चाहते हैं। फिर उनका जो आने का जो उद्देश्य होता है, जो चीज उनको प्रेरित करती है आने के लिए, वो अब भय नहीं है, वो प्रेम है, वो सौंदर्य है जो उनको खींच के ला रहा है। और फिर वो चाहते हैं कि हर रोज कम से कम एक बार आके श्री श्री राधा गोकुलानंद का दर्शन अच्छी तरह से करें, फिर हमारे दैनिक कार्य में चले जाएं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखला रहे हैं कि हमें भी भगवान का दर्शन करने के लिए कितना आतुर होना चाहिए, हमें भी मंदिर में आना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो हर रोज वो जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, भगवान का दर्शन किए बगैर वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें भी कैसे कम से कम दिन में एक बार भगवान का दर्शन तो करना ही चाहिए। और ऐसे करते करते वास्तव में कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक इस शब्द का अर्थ हम समझ पाएंगे। इसलिए यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ज्योतपिये तो तृष्ण बाढ़े निरंतर, मुखम भुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। इसलिए मुखाम भुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर, इसलिए अपने आंखों को वो भगवान जगन्नाथ के सुंदर मुख से उठा नहीं पाए। आंखें बड़े बड़े करके वो दर्शन कर रहे थे भगवान का। एमत महाप्रभु लन लन भक्त गण, मध्यान पर्यंत कैल श्रीमुख दर्शन। इस प्रकार से एमत महाप्रभु लन भक्त गण, मध्यान पर्यंत कैल श्रीमुख दर्शन। भगवान जगन्नाथ के श्रीमुख का दर्शन मध्यान्ह के समय मतलब 12 बजे के समय तक उन्होंने लिया। और उस समय हम कल्पना कर सकते हैं प्रातः काल से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त केवल आंखें खोल बड़े बड़े करके जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे बस। तो हम समझ सकते हैं कि कितना आकर्षण उनको उन्होंने महसूस किया होगा। घंटों घंटों केवल खड़े रहे वहां पर भगवान का दर्शन करते करते। उस समय दर्शन करते हुए जैसे कि हमेशा हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के शरीर में प्रकट होने लगे। स्वेद कंप अश्रु जल वह सर्वक्षण, दर्शनेर लोभे प्रभु कोरे समवर्ण। तो कौन से लक्षण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के शरीर में? स्वेद मतलब पसीना, कंप शरीर में कंपन, अश्रुजल मतलब आंखों से आंसू बहने लगे, सर्वक्षण हमेशा, दर्शन रे लोभे प्रभु कोरे संवरण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंखों में जो आंसू आ रहे थे आनंद के आंसू, संवरण उन अपने आप को रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि ये अगर आंसू ज्यादा बहते आंखों से तो दर्शन में बाधा आ जाती, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया, अपने आंसू बंद कर दिए, क्योंकि वो भगवान का दर्शन निरंतर करना चाहते थे। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर में भगवान की कोई विशेष सेवा करने से, जैसे दर्शन हो, नामोच्चारण हो, तो उनके शरीर में जब ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं तो कभी कभी वो इन लक्षणों को रोक देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि जब कोई भौतिकवादी लोग होते हैं या अभक्त होते हैं उनके सामने ये ऐसे लक्षण प्रकट कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा अगर करेंगे तो भौतिकवादी लोग जो हैं वो ऐसे लक्षणों का नकल करेंगे, हालांकि उनका स्तर ऐसा नहीं है, केवल नकल करेंगे, नाटक करेंगे। इसको सहजीय कहते हैं। वृंदावन में ऐसे कई लोग हैं जो खामखा आकर यूं ही बस रोने लगते हैं भगवान के सामने, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु उनके शुद्ध भक्तों की जो आंसू थे वो इस प्रकार के आंसू नहीं है। कोई भी आकर यहां रोने लगे वो हो सकता अपनी भौतिक पीड़ा के से रो रहा हो सकता है जीवन में कोई कष्ट है आकर यहां रो रहा हो कि मुझे कुछ कष्टों का निवारण कीजिए। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इस तरह के जो सहजीय आंसू हैं वो सारे वेदों के सिद्धांतों को धो डालते हैं। वैसे वेदों के अनुसार ये बताया जाता है कि हमें भगवान के लिए रोना चाहिए, लेकिन ये कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता। पहले तो हमें केवल वैष्णवों के आदेश के अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए, बड़े सख्ती से आदेशों का पालन करके अभ्यास करना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए, दिन भर भगवान के भजन में हमें मग्न रहना चाहिए, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम भजन क्रिया करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, अनर्थों का निवारण हो जाता है, और फिर धीरे धीरे से निष्ठा आने के बाद में फिर हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जबकि वास्तव में हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है, फिर स्वाभाविक तौर से शुद्ध प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन उस स्तर के पहले अगर कोई व्यक्ति सहज रूप से भक्ति को स्वीकार करके सोचता है कि मैं आंसू बहाऊं तो वो ठीक नहीं है, वो नकली आंसू है। एक संस्था ऐसी है जहां पर जो पहले बार भी लोग सत्संग में आते हैं उनको भी वो कहते हैं कि आप रो, और ये सच्ची बात है। हम गए थे ऐसे जगह क्योंकि हमारे संस्था के भक्त जो हैं वो छोड़कर उस संस्था में गए थे, तो हम देखना चाहते थे कि ये कैसी संस्था है, ये लोग क्या सिखाते हैं, क्या करते हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे आकर्षित होकर ये भक्त छोड़कर चले गए। तो वहां उस जगह गए, एक माता जी प्रवचन दे रही थी और सबको सब लोग वहां बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। अरे सब नए नए भक्त बाहर जाके वो सिगरेट पी रहा था, अब आया वो भी रोने लग रहा है, अरे ये क्या मजाक है। तो इस प्रकार से ये सहजीय कहते हैं। सहजीय मतलब क्या, जो भक्ति को बहुत सहज लेते हैं, सस्ता लेते हैं, समझते हैं कि ये एक भावुकता की बात है, लेकिन भक्ति कोई भावुकता की बात नहीं है। इसमें भाव तो अवश्य है लेकिन ये आत्मा का भाव है, ये हमारे इस विचलित चल विचल होने वाले भौतिक मन के विकार की बात नहीं है कि आंसू नहीं है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो लक्षण प्रकट किए वो उच्च कोटि के शुद्ध आध्यात्मिक आंसू थे। तो ये एक कारण होता है कि भगवान के शुद्ध भक्त अपने आंसुओं को रोक देते हैं। दूसरा कारण ये होता है जहां की जैसे चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का क्या सेवा कर रहे थे इस समय, कोई बता सकते हैं? दर्शन कर रहे थे, ये भी एक सेवा है। भगवान की सेवा होती है उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन करना, तो चैतन्य महाप्रभु सेवा कर रहे थे। भक्ति में भक्त जो भी कुछ करता है, जो कि प्रेम से प्रेरित होता है, वो सब कुछ सेवा होता है। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप भक्त लोग क्या नामोच्चारण केवल बैठ के हरे कृष्ण बोलते हो, हाँ भगवान का दर्शन करते हो, कुछ काम करो कुछ। लेकिन असलियत में काम तो यही है, असली सेवा तो यही है। और भक्ति मार्ग में आने के बाद में भी हमें जानना चाहिए कि अगर हमने ये जो मूल बातें हैं इन पर दुर्लक्ष किया तो फिर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि ठीक है भगवान का दर्शन कौन करेगा, जाएंगे हफ्ते में एक बार जाएंगे, कभी समय मिला जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ठीक है क्या फर्क पड़ता है, और हरि नाम का जाप कीर्तन ठीक है करेंगे घर में बैठ के करेंगे, नहीं मंदिर में आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहीं पर हम भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन ऐसे वातावरण में कर सकते हैं, भक्तों के बीच में बैठकर हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं। ये सेवा जब तक हम नहीं करेंगे, हमारी बाकी सेवा में वो भावना नहीं आएगी। और हमारे दिन भर जो भी हम व्यवसाय करते हैं, घर को संभालते हैं, उसमें हमारी चेतना सही नहीं रहेगी। इसलिए इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को रोक लिया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, तो उस समय उनके एक सेवक थे जो कि उनके सारथी भी थे। भगवान श्री कृष्ण के सारथी कौन है? अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण, लेकिन भगवान कृष्ण के सारथी कौन? दारुक। दारुक थे। तो दारुक वो एक बार भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे, चामर हिला रहे थे, उनको हवा दे रहे थे, पंखा चला रहे थे उनके लिए, भगवान के लिए। तो उस समय अचानक जब भगवान को उन्होंने देखा, भगवान की सेवा करते करते उनके अंदर ये अष्ट सात्विक विकार आने लगे और कंपन होने लगा शरीर में, और ऐसे प्राय होने लगा, उनको महसूस होने लगा कि अब मेरा चामर गिरने वाला है हाथ से। उस समय उन्होंने अपने आप को रोक लिया, सारे लक्षणों को उन्होंने बंद कर दिया, अपने आप को बाहरी जो चेतना में ला लिया। क्यों? जब वेदों में कहा गया है कि आपके अंदर ये अष्ट सात्विक विकार आने चाहिए, आंसू बहने चाहिए, ये कहा जाता है कि आप में ऐसे होना चाहिए, और जब हो रहा है तो दारुक अपने आप को रोक रहे हैं, ये क्यों? वेदों के सिद्धांतों की खिल रहे हैं। हाँ, तो ये एक ऊंचा सिद्धांत है कि और भी ऊंचा सिद्धांत है कि भगवान की सेवा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, भगवान को कष्ट नहीं आना चाहिए। तो दारुक ने सोचा, मैं जो चामर चला रहा हूं, अगर मेरे इंद्र तृप्ति की वजह से, मतलब मेरे आनंद की वजह से मैं चामर चलाना बंद कर दूं तो भगवान को पवन नहीं आएगा, उनको कष्ट होगा। तो इसलिए इससे ऊंचा सिद्धांत था, ले मैं मेरे जो लक्षणों को, भक्ति के लक्षणों को रोक दूं, लेकिन भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने आप को रोक लिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं, मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन, भोग समय प्रभु कोरे न कीर्तन। मध्य मध्य भोग लागे, क्योंकि नेत्रोत्सव का समय था, बीच बीच में भगवान जगन्नाथ को भोग लगता था। तो जब भोग लगता था तो उस समय, केवल उस समय चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त अपने आंखों को भगवान से हटा लेते थे, क्योंकि दर्शन बंद हो जाता था। और उस समय क्या करते थे? भोगेर समय प्रभु कोरे न कीर्तन, फिर उस समय कीर्तन करते थे। दर्शन आनंद प्रभु सबे पास रीला, भक्त गणे मध्यान कोरिते प्रभु रोलो न गेला। दर्शन आनंद प्रभु सब पास रीला, भगवान के दर्शन के आनंद में चैतन्य महाप्रभु बाकी सब कुछ भूल गए। वैसे चैतन्य महाप्रभु सुबह को कुछ अन्न नहीं ग्रहण करते थे, प्रसाद नहीं लेते थे, सीधे 12 बजे दोपहर को वो लेते थे। ये चैतन्य महाप्रभु की दिनचर्या हुआ करती थी। प्रातः काल में उठकर सबसे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर में आया करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे सुबह सुबह, और वहीं पर कीर्तन करते थे, दर्शन करते थे। दिन भर ऐसे कार्य जगन्नाथ मंदिर में बीत जाता था। फिर दोपहर के समय वो लौट कर पहले समुद्र में स्नान करते थे, समुद्र में स्नान करके हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आते थे, हरिदास ठाकुर की कुटिया में, क्योंकि हरिदास ठाकुर कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि उनका जन्म एक मोहम्मदन परिवार में हुआ था और केवल हिंदुओं का वेश था, और आज भी है। वैसे चैतन्य महाप्रभु को यह नियम पसंद नहीं था, और जो भी आचार्य उनको भी नियम पसंद नहीं था, क्योंकि कोई किसी भी अगर वो कृष्ण भक्त है तो उसको जाने के लिए अनुमति अवश्य होनी चाहिए। कि कोई व्यक्ति केवल हिंदू है तथा कथित, लेकिन उसके हृदय में भक्ति भावना नहीं है, उसे दर्शन के लिए अनुमति मिल जाती है, लेकिन एक सच्चे भक्त को जो हिंदू परिवार में नहीं जन्म लिया है उसको दर्शन के लिए संधि नहीं मिलती है, तो ये कैसा अन्याय, ये कैसा न्याय है, ये सही नहीं है। लेकिन वहां कुछ उत्पात नहीं कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। जब हरिदास ठाकुर भी खुद अंदर गए नहीं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि हालांकि उनका जन्म तो एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक मोहम्मदन राजा की सेवा स्वीकार की थी, उनके वो मंत्री बने थे, इसलिए वो प्राय मुसलमान जैसे माने जाते थे, और उनका नाम भी रखा हुआ था लोगों ने साकर मलिक और दबीर खास, जो कि मुसलमान नाम है। तो ये तीनों हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मंदिर में नहीं जाया करते थे। तो हरिदास ठाकुर बाहर रहकर केवल जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसका दर्शन करते। बताया जाता है कि वैष्णव मंदिर में अगर केवल ऊपर मंदिर के ऊपर चक्र का दर्शन करें तो अंदर विग्रह के दर्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल राधा गोकुलान मंदिर के ऊपर दर्शन करके हमें जाना चाहिए, नहीं, जहां तक हो सके प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सके तो कम से कम उतना तो करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे अंतर, तो बाहर ही से उस चक्र का दर्शन करके संतुष्ट रह जाते। भक्ति की शक्ति कितनी है कि जब भक्त भगवान को देखने नहीं जा सकते तो भगवान भक्त का दर्शन भक्त को देना चाहते हैं, लेकिन भक्त का दर्शन खुद लेना चाहते हैं। ये है भगवान की अनुकंपा, इसलिए भक्त भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, भक्त वत्सल प्रभु जगन्नाथ। तो वही जगन्नाथ जिनका दर्शन करने के लिए हरिदास ठाकुर अंदर नहीं जा सकते थे, वही जगन्नाथ, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन देने के लिए और लेने के लिए हरिदास ठाकुर के कुटिया में जाया करते थे। और फिर थोड़ा समय हरिदास ठाकुर के संग बिताकर, उनका संग लेकर फिर वो गंभीरा में जाते थे जहां उनका निवास स्थान था, और फिर वहां वो मध्याह्न के समय वो प्रसाद ग्रहण करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। तो 12 बजे का समय हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु, जैसे यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, दर्शन आनंद प्रभु सब पसारीला, सब कुछ भूल गए कि मुझे मेरा भोजन लेने, प्रसाद लेने का समय हो गया है, अब मेरे और कार्य बाकी हैं, सब कुछ भूल गए भगवान के दर्शन के आनंद में। लेकिन भक्तगण मध्याह्न कोरिते प्रभु लोना गेला, लेकिन भक्त लोग सोच रहे थे कि नहीं नहीं, अभी उनका समय हो गया है, प्रसाद लेने का समय हो गया, इसलिए ठीक है अभी दर्शन लेते रहें तो फिर वो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए भक्तों ने फिर धीरे से चैतन्य महाप्रभु कर वो वहां पर वहां से ले गए और उनके प्रसाद के लिए उनके कुटीर में गंभीरा में ले गए। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रातः काल रथ यात्रा होबे के जानिया, सेवक लगाए भोग द्विगुण करिया। तो सारे जो वहां के पुजारी थे वो जानते थे कि अभी अगले दिन प्रातः काल में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो भोग हैं वो दुगना किए, बढ़ा दिया। तो सारे सेवक वहां पर इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, को यहां ज्यादा भोग बनाने जा रहे थे। जगन्नाथ मंदिर का जो रसोई घर है वो सारे जगत में सबसे बड़ा रसोई घर है। इतना बड़ा रसोई घर है, उसमें 750 चूल्हे हैं, शायद इससे भी ज्यादा होंगे, और एक ही समय उस रसोई घर में 1,00,000 लोगों के लिए प्रसाद बन सकता है, और किसी उत्सव के समय 40,000 लोगों के लिए प्रसाद बनना यह तो साधारण सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। जब यहां हमारे मंदिर में हमने जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव जब हम मनाते हैं तो एक दिन एक बार जब 20,000 लोगों के लिए बनाना होता है तो कितना कष्ट होता है भक्तों को, कितना कुछ प्लानिंग वगैरह करना पड़ता है, और भक्त लोगों कितना ये भारी भारी बर्तन और फिर प्रसाद को वहां ले जाना, भक्तों को बांटना और प्रसाद के वितरण के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, कितने दिन पहले से भक्तों को योजना बनाना पड़ता है, कैसे बांबू आएंगे, कैसे लाइन बनेंगे, कैसे वितरण होगा, हाथ कहां धोएंगे, क्या, तो कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में 1,00,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाने की व्यवस्था है एक ही समय। और जब सेवकों ने देखा कि अब कल रथ यात्रा का समय है, उनका उत्साह और बढ़ गया, भक्तों का उत्साह भी बढ़ गया, इसलिए जो भोग है वो दुगना हो गया। और इस तरह से कृष्णदास कविराज इस अध्याय के अंत में गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला का वर्णन समाप्त करके और उसके बाद में जो नेत्रोत्सव की का दर्शन है जो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने किया, इसका वर्णन करने के पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस कथा को यहां विराम दे रहे हैं। गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेप कहिलो, यहां देखी शूनी पापीर कृष्ण भक्ति होइलो। वो कहते हैं गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेप कहिलो, गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला मैंने संक्षेप में कहा है। वैसे भगवान की कोई भी लीला हो वो तो संक्षेप में ही होती है, विस्तार में कौन कह सकता है। अनंत शेष भी प्रयत्न है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करते जाएं, वो भी समाप्त नहीं कर सकते लीलाओं को। तो वैसे यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हालांकि काफी विस्तार में की थी, लेकिन फिर भी संक्षेप में वो कह रहे हैं, यहां देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति हो लो। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पापी हो, नीच व्यक्ति हो, अगर वो भी ऐसी लीलाओं का श्रवण करता है तो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का उदय हो सकता है। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का फल यह है, श्रुति फल। वैसे अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में अलग अलग तरह के श्रुति फल बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भागवत का श्रवण का फल भी बताया जाता है। कोई लोग जो होते हैं जो भागवत सुनाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपने ऐसे भागवत सप्ताह का श्रवण किया तो आपको ये भौतिक फल मिलेगा, गजेंद्र मोक्ष की लीला आपने सुनी तो आपको ये फल मिलेगा, आपने वो लीला सुनी तो आपके बुरे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे, आपके कोई व्यस्त ये कथाएं सुनिए, ये श्रुति फल है। लेकिन कृष्ण कथा सुनने का असली श्रुति फल क्या है? हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का जागरण होना चाहिए, ये असली श्रुति फल है। इसलिए जो व्यक्ति बड़े ध्यान से भगवान की कथाओं को सुनता है और खास करके चैतन्य महाप्रभु की कथाएं, तो बहुत जल्दी उसे भगवान की कृपा मिल जाती है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में क्या विशेष बात है कि चैतन्य महाप्रभु वही भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि कलयुग में हमारे लिए भगवान की प्राप्ति करने की बहुत आसान करने के लिए आए हैं, बहुत सरल करने के लिए आए हैं, और बड़े कृपालु है ये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वचय नमः। महावदान्याय मतलब अति कृपालु भगवान के रूप हैं। और साथ साथ जगन्नाथ जी वो भी बड़े कृपालु अवतार हैं भगवान के। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के वो हैं तो कृपालु, लेकिन हैं थोड़े कड़क, क्योंकि वो शरणागति मांगते हैं कि पहले मेरे शरण में आओ फिर मैं तुम्हें भक्ति दे दूंगा। लेकिन दोनों चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ, ये भगवान श्री कृष्ण के इतने विशेष रूप हैं कि इन दोनों का आश्रय लेने से बहुत आसानी से हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो सकती है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद वृंदावन नहीं गए, वो नीलाचल में जगन्नाथपुरी में निवास करने गए। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था, जगन्नाथ जी का जो रूप है वो भी कृष्ण भगवान का रूप है जो कि विरह की भावना में है, जो वृंदावन के निवासियों से जो विरह की अनुभूति कर रहे हैं वो रूप है जगन्नाथ जी का। और चैतन्य महाप्रभु भी भगवान श्री कृष्ण का रूप है, राधा रानी की कांति और भाव को स्वीकार करके। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये है चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण के दोनों इन अद्भुत और अति दयालु रूपों का मिलन यहां पर इस रथ यात्रा में हम देख रहे हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन में और रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी की लीलाओं में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो भी रथ यात्रा की लीलाओं का वर्णन है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की हमारे ऊपर अति कृपा है, क्योंकि उनकी वजह से हमें भगवान के इन दोनों सुंदर और अति कृपालु रूपों का लाभ और कृपा मिल सकता है। इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत में अध्याय में कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पद जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके पद में मैं अनुकंपा की याचना करता हूं और ऐसे मैं चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूं। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां इस लीला को समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में जाकर वो वर्णन करने वाले हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने रथ यात्रा का उत्सव देखा और फिर उस उत्सव में शामिल होकर कैसे उन्होंने कीर्तन किया और कैसे वहां वातावरण हुआ, वो और कभी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री हरि नाम संकीर्तन की, इताई गौ प्रेमानंदे। गुलाम।